डॉक्टर रॉबर्ट यारब्रॉ द जोहानिन एपिस्टल्स सत्र 4 दो जॉन एक विश्वसनीय चर्च के लिए नोट्स। जॉन के पत्रों पर व्याख्यानों की हमारी निरंतर श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला को जोहानिन पत्र ईसाई जीवन को संतुलित करना कह रहा हूँ। और हमारे पिछले व्याख्यान में हमने गयुस नामक किसी व्यक्ति को लिखे गए पत्र के बारे में बात की थी और मैंने उस व्याख्यान को तीसरा जॉन एक विश्वसनीय मित्र को नोट्स कहा था। और द्वितीय यूहन्ना का प्रारूप भी बहुत समान है, भाषा भी बहुत समान है, लेकिन मैं इसे विश्वसनीय चर्च के लिए नोट्स कहूंगा। मैं एक बार फिर व्याख्या की उस पद्धति का उल्लेख करना चाहता हूं जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि हम जिस तरह से पढ़ते हैं उसका प्रभाव अक्सर इस बात पर पड़ता है कि हम क्या देखते हैं। और फिर मैं इन व्याख्यानों में इसका और उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसे दो बार दोहराना चाहता हूं, ताकि यदि किसी ने इसे पहली बार नहीं देखा हो तो मैं इसे दोबारा दोहराना चाहता हूं। यह दो चरणों वाली बहुत ही सरल दो चरणों वाली प्रक्रिया है। प्रक्रिया नंबर एक देखो और नंबर दो कहो, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप कहने से पहले देखें। और देखने से मेरा मतलब है कि जो कुछ है उसका अवलोकन करना। और वास्तव में यह किसी भी बाइबल की पुस्तक या अंश या महत्वपूर्ण पद के लिए आजीवन प्रक्रिया है, क्योंकि यह किसी अन्य स्थान और समय में हुआ था। यह संभवतः हमारी अपनी भाषा में नहीं हुआ। और जितना ज्यादा आप इन चीजों का अध्ययन करते हैं, और मैं पिछले 45 सालों से इनका अध्ययन कर रहा हूं, जितना ज्यादा आप सीखते हैं, आप हर चीज के बारे में नहीं जानते, आप सब कुछ नहीं जानते। और कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि मैं क्यों सीखता रहता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा मैं सीखता हूं उतना ही कम मैं कई चीजों के बारे में सुनिश्चित होता हूं। बेशक मुझे उम्मीद है कि मैं बुनियादी बातों जरूरी चीजों के बारे में ज्यादा आश्वस्त हूं, लेकिन हमें यह देखने की जरूरत है कि क्या था और तब क्या था, इससे पहले कि हम यह कहना शुरू करें कि इसका क्या मतलब है। बाइबल की किसी आयत को समझना वाकई आसान है। हम राजनेताओं को हमेशा ऐसा करते हुए देखते हैं। वे बाइबल की कोई आयत उद्धृत करते हैं और उसे हमारे समय और दिन में होने वाली किसी घटना से जोड़ते हैं। और अगर आपको बाइबल की आयत के बारे में पता है तो इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वे इसे किस पर लागू कर रहे हैं। तो यह बिना देखे कहने का मामला है, इसलिए हम देखना चाहते हैं। और मैं आगे बढ़ते हुए पाठ को पढ़ूंगा, इसलिए हमें कम से कम यह देखने का मौका मिलेगा कि वहां क्या है, और यह स्क्रीन पर पीले रंग में दिखाई देगा। और फिर जब हम देखेंगे तो हम निर्णय लेंगे, हम निष्कर्ष बताएंगे जो मुझे उम्मीद है कि उस समय और वहां उनके प्रति वफादार होंगे, लेकिन यह यहां और अभी लागू होता है। इसलिए हम जो कुछ भी है उसे यहां और अभी लाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा करना चाहते हैं यह सुनिश्चित करते हुए कि हम कम से कम जो कुछ भी तब था उसका अनुमान लगा रहे हैं। और आप नीचे देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं पाठ को पीले रंग में रखूंगा और फिर मैं अपने कथन को बक्सों में रखूंगा ताकि इसे परमेश्वर के पवित्र वचन से अलग किया जा सके। मेरा कथन परमेश्वर के वचन के समान नहीं है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन है। यदि मेरी व्याख्या विश्वसनीय है तो यह परमेश्वर के वचन को खोल देगा, लेकिन जिस चीज से हम मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं वह परमेश्वर का वचन है, न कि उसके बारे में मेरी बातें। तो दो यूहन्ना में एक अभिवादन है और आप इसे इन शब्दों के साथ सारांशित कर सकते हैं, यूहन्ना का प्रेम जो वास्तव में अपने पाठकों के लिए प्रेम है, दूसरा उसका आनंद लेकिन चिंता भी, तीसरा इस मंडली के लिए एक चेतावनी और फिर उसे विदाई मिल गई। तो सबसे पहले यूहन्ना का सच्चाई में प्रेम पद 1-3 तक। एल्डर और वह यूहन्ना है, चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के लिए, और जैसा कि आप दो यूहन्ना का अध्ययन करते हैं आप देखते हैं कि पहले वह उन्हें एकवचन में एक समूह के रूप में संबोधित करता है, लेकिन फिर इस महिला के बच्चे हैं, जिसे अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको लगता है ठीक है, यह एक महिला और उसके बच्चे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि यह एक मंडली है, और इसलिए समूह को एक पूरे के रूप में एक चुनी हुई महिला कहा जाता है, और फिर मंडली के सदस्यों को बच्चे कहा जाता है। तो एल्डर से हम कह सकते हैं, एक चर्च और उसके सदस्यों के लिए, जिन्हें मैं सच्चाई से प्यार करता हूँ, और केवल मैं ही नहीं बल्कि वे सभी जो सच्चाई को जानते हैं, क्योंकि सच्चाई हमारे अंदर रहती है। आप इसका भी अनुवाद कर सकते हैं, हमारे बीच और हमेशा हमारे साथ रहेगा। अनुग्रह, दया और शांति हमारे साथ रहेगी परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह से सच्चाई और प्रेम में। तो कुछ अवलोकन। नंबर एक, मेरा नाम 1 और 3 जॉन की भाषा के साथ समानता में जेबेदी का बेटा जॉन लेखक है, और मैंने पिछले व्याख्यान में उल्लेख किया था 1 पत्रस 5:1 में पीटर खुद को एक एल्डर कहता है, वह खुद को एक साथी एल्डर कहता है उन चर्च नेताओं के साथ जो 1 पत्रस का पत्र पढ़ रहे हैं। फिर जॉन कहता है, केवल मैं ही नहीं बल्कि वे सभी जो सत्य को जानते हैं। और जॉन ने पॉल की तरह ही चर्च की एकजुटता की भावना को व्यक्त किया। परमेश्वर के लोगों में एकता है जो प्रभु यीशु मसीह और उनके पापों की क्षमा को जानते हैं। मुझे आशा है कि आप स्वयं यह जानते होंगे, आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे होंगे जहां बहुत से अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन जो लोग मसीह को जानते हैं उनमें एक समानता है जो उनके व्यक्तिगत मतभेदों या उनके आदिवासी मतभेदों या उनके सामाजिक मतभेदों या उनके आर्थिक मतभेदों या उनके शैक्षिक मतभेदों से परे हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे लोग खुद को दूसरों से अलग करते हैं, अक्सर खुद को दूसरों से ऊपर उठाने के लिए या यह स्पष्ट करने के लिए कि दुश्मन कौन है। आप हम में से नहीं हैं, आप उनमें से एक हैं। लेकिन सुसमाचार लोगों को एकजुटता में लाता है, और आपको याद होगा कि चर्च के लिए ग्रीक शब्द एकलेसिया है, इसलिए हमारे पास अंग्रेजी में यह शब्द है एकलेशियल, जिसका संबंध चर्च से है। इसलिए हम इन पहले 3 पदों में एक चर्चीय एकजुटता देखते हैं, न केवल यूहन्ना बल्कि वे सभी जो सत्य को जानते हैं, जो सुसमाचार संदेश को संदर्भित कर सकता है, लेकिन यह उस व्यक्ति को भी संदर्भित करना चाहिए जो सुसमाचार संदेश द्वारा दर्शाया गया है। इसलिए यह मसीह और मसीह और ईश्वर के बारे में सत्य है। अब यह संभव है, और मैं अपने दृष्टिकोण में प्रश्न उठाता हूँ, और मैं इसे एक प्रश्न के रूप में उठाता हूँ क्योंकि मैं निश्चित नहीं हो सकता, लेकिन क्या यूहन्ना इफिसियन मंडली को 2 यूहन्ना को संबोधित कर रहा था, क्योंकि वह एशिया की 7 कलीसियाओं की प्रमुख मंडली थी, और यदि यूहन्ना, जैसा कि मैं सिद्धांत बना रहा हूँ, वह 1 यूहन्ना की पुस्तक के लिए एक आवरण पत्र के रूप में कलीसिया को 2 यूहन्ना लिख रहा है जो कलीसियाओं में समस्याओं के कारण है, 1 यूहन्ना उन सभी कलीसियाओं को एक पत्र है जहाँ समस्या है कि वहाँ फूट पड़ गई है और ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें उन्हें परखने की आवश्यकता है, क्योंकि कलीसियाओं में झूठे तरीके से मसीह का प्रचार करने वाले लोग हैं। अतः यदि यह इफिसुस में हुआ था तो हमें यह सोचना होगा कि पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया को क्या लिखा था, जो लगभग निश्चित रूप से कलीसिया के अभिलेखों में दर्ज होगा, और पौलुस ने कलीसिया की उस एकजुटता के बारे में लिखा था जिसका वह आनंद उठाती है। पौलुस ने कहा, मैं प्रभु के लिए एक कैदी तुमसे आग्रह करता हूँ कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो उसके अनुसार चलो, पूरी दीनता और नम्रता के साथ, धीरज के साथ, प्रेम से एक दूसरे को सहते हुए आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए उत्सुक रहो, ताकि यह वह एकता हो जो आत्मा उत्पन्न करती है, यह वह एकता हो सकती है जो आत्मा परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के एक भाग के रूप में रखती है। और परमेश्वर की एक एकीकृत आत्मा उन लोगों में एकता लाने जा रही है जो सुसमाचार संदेश द्वारा परमेश्वर के साथ एकजुट हैं। शांति के बंधन में आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं। 3 यूहन्ना के अंत में याद रखें, वह उनके लिए शांति की कामना करता है। एक शरीर और एक आत्मा है और अब यह कलीसिया चर्च की एकजुटता है। एक शरीर और एक आत्मा है और ध्यान दें, वह इफिसियन मंडली को लिख रहा है जिसमें कई ग्रह कलीसियाएं होंगी, और वह एशिया में कलीसियाओं को लिख रहा है जिसमें उस प्रांत में 7 अलग अलग एशियाई कलीसियाएं थीं। इसलिए स्थानीय रूप से वहां सिर्फ एक देह नहीं थी, वहां कई देह थीं, लेकिन वे सभी एकजुट हैं। वहां चर्च की एकजुटता है, वहां एक देह और एक आत्मा है, ठीक वैसे ही जैसे आपको अपनी बुलाहट की एक ही आशा के लिए बुलाया गया था। अनुवादक कहते हैं कि यह आपकी बुलाहट से संबंधित है। एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक ईश्वर और सबका पिता जो सब पर और सबके माध्यम से और सब में है। इन शुरुआती आयतों से एक बड़ी सीख यह है कि 2 यूहन्ना नामक इस छोटे से पत्र में चर्च की एकजुटता की एक मजबूत भावना है। वह अपने अभिवादन का समापन यह कहकर करता है कि अनुग्रह, दया और शांति हमारे साथ रहेगी। यह हमारे साथ नहीं हो सकता, लेकिन यह भविष्य की भविष्यवाणी की तरह है, और मैं इसे पादरी आशावाद कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि वह इस चर्च को लिख रहा है और वह उन्हें उन चीजों के बारे में चेतावनी देता है जो हो सकती हैं। लेकिन अगर यह 1 जॉन के लिए एक कवर लेटर है, तो 1 जॉन पत्र और भी बड़ी चीजों और अधिक दबाव वाली चीजों के बारे में चेतावनी देता है जो चल रही हैं। यदि आप मुश्किल क्षेत्र में जाने वाले हैं, तो आपको उम्मीद रखनी होगी कि आप इससे बच जाएंगे। यह कोई उम्मीद भरी आशावादिता या सभी तर्कों के विरुद्ध अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु के साथ चला है और जिसने कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर के प्रावधान को देखा है। इन व्याख्यानों में पहले मैंने जॉन के आघात, सभी मृत्यु, सभी पीड़ाओं, जॉन द्वारा देखे गए रक्त का उल्लेख किया था। जब तक हमारे पास इस धरती पर जीवन और सांस है, तब तक ईश्वर ने हमें एक और दिन के लिए अपने में रहने के लिए यहाँ रखा है, और यदि इसका अर्थ है आगे संघर्ष करना और विश्वास के लिए संघर्ष करना, तो यह हमारे मिशन और बुलाहट का हिस्सा हो सकता है। इसलिए यूहन्ना पिता और पिता के पुत्र की ओर से सत्य और प्रेम में आशावाद का आधार प्रस्तुत करता है। ध्यान दें, अनुग्रह, दया और शांति हमारे साथ होगी, यूहन्ना की ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र की ओर से, जिसका वह सेवक और संदेशवाहक है। इसलिए यह अभिवादन का सार है। अब हम आनंदित और चिंतित हैं। मुझे यह पाकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे कुछ बच्चे, सभी नहीं बल्कि कुछ, सत्य में चल रहे हैं, जैसा कि पिता ने तुम्हें आज्ञा दी थी। और अब मैं तुमसे पूछता हूँ, प्रिय महिला, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि वही जो हमें शुरू से मिली है, कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यही वह आज्ञा है जिसे तुमने आरंभ से सुना है कि तुम उस पर चलो। क्योंकि बहुत से धोखेबाज हैं और बहुत से धोखेबाज संसार में निकल आए हैं जो यीशु मसीह के देह में आने को स्वीकार नहीं करते। ऐसा ही व्यक्ति धोखेबाज और मसीह विरोधी है। अपने आप को सचेत रखो ताकि जो हमने परिश्रम किया है उसे तुम न खो दो बल्कि पूरा प्रतिफल पाओ। इसलिए सबसे पहले यहां परस्पर क्रिया पर ध्यान दें। मैं अपनी स्क्रीन को विभाजित करने जा रहा हूं ताकि मैं उन बाइबल आयतों को वहां रख सकूं। उस पैराग्राफ में सत्य, आज्ञाओं और प्रेम के बीच के अंतर संबंध पर ध्यान दें। और यह ईसाई जीवन को संतुलित करने के करीब पहुंच रहा है, और मैं अगले व्याख्यान में इसके बारे में और बात करूंगा। लेकिन सत्य का संबंध उससे है जो हम जानते हैं या जो हम सोचते हैं या जो हमें सिखाया जाता है। यही सत्य है। अब यह मसीह को संदर्भित करता है और मसीह को सत्य कहा जाता है, लेकिन सत्य केवल एक व्यक्ति नहीं है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मसीह के बारे में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम जानते हैं और स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, जो परिभाषित करती हैं कि हम सत्य का एक समूह क्या कह सकते हैं। तो यह हमारे दिमाग में है। हम सीखते हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं, हम अपने दिमाग से उस पर काम करते हैं। लेकिन फिर आज्ञाएं भी हैं, और आज्ञाएं वे चीजें हैं जो हम करते हैं। आज्ञाएं नैतिकता हैं, वे हमारे जीने का तरीका हैं, वे हमारे व्यवहार का तरीका हैं। और फिर प्यार, और प्यार दिल की एक प्रवृत्ति है। हम प्यार करते हैं या नहीं करते, हम उदासीन हैं, हम गर्म हैं, हम ठंडे हैं, हम गुनगुने हैं, ये सभी संकेतक हैं जिन्हें हम पारस्परिक समर्पण कह सकते हैं। मुझे तालमेल शब्द पसंद है। हमारा लोगों के साथ एक तालमेल है। और अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़े और अगर आप उन सभी शब्दों को रेखांकित करें जो सत्य से संबंधित हैं, और उन सभी शब्दों को जो आज्ञाओं से संबंधित हैं, और उन सभी शब्दों को जो प्रेम से संबंधित हैं, तो आप पाएंगे कि ये लोग काफी हद तक उन तीन शब्दों से परिभाषित होते हैं, क्योंकि वे ईश्वर, पिता और पुत्र और एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए मैं बस यही अवलोकन करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं अगले व्याख्यान में इसके बारे में और बात करूंगा। दूसरे, बहुत से लोगों ने देखा है कि एक, दो और तीन जॉन में कोई संदर्भ नहीं है, और यह वास्तव में सच नहीं है, बेशक क्योंकि हमने पुराने नियम में कैन का उल्लेख किया है। लेकिन मैं आपको पुराने नियम की प्रतिध्वनि के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जॉन यहाँ अपनी शिक्षा में ईश्वर और मसीह के बारे में शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए हम इसे धार्मिक शिक्षा कह सकते हैं। वह धर्म के किसी नए दर्शन का परिचय नहीं दे रहे हैं। तो आपके पास पुराने नियम का कुछ धर्म था, और अब यह असली धर्म है, यीशु का धर्म। ऐसा नहीं है। यह पत्र एक यूहन्ना की तरह मसीह द्वारा पवित्र शास्त्र की पूर्ति के मद्देनजर पुराने नियम की भक्ति को पुनः परिभाषित करता है, और यह हमेशा सच था। पुराने नियम की भक्ति प्रतिज्ञा की भक्ति थी। अब्राहम को एक प्रतिज्ञा मिली, आदम और हव्वा को एक प्रतिज्ञा मिली, नूह को एक वादा मिला, और वे सभी इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने के लिए क्या करेगा। लेकिन उस विश्वास में वे परमेश्वर के साथ एक विश्वास संबंध में आ गए जो उनके पास आया था और कहा था, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है। हम इसे वाचा कहते हैं। और जो लोग परमेश्वर के वादे पर विश्वास करते थे, वे परमेश्वर के मित्र बन गए, वे परमेश्वर के अनुयायी बन गए, वे उस वादे के द्वारा बचाए गए जो मसीह में पूरा हुआ। और इसी तरह यूहन्ना अपनी पूरी भाषा में परमेश्वर के वादे को शामिल कर रहा है, जिसने कहा, मैं एक उद्धारकर्ता भेजूंगा, मैं एक मसीहा भेजूंगा। और अब यीशु के आने और यीशु के पिता के पास स्वर्गारोहण के बाद हम परमेश्वर पिता को जानते हैं, जिसने अपने पुत्र को भेजा और उसने अपनी आत्मा को भेजा। अब जबकि उसका पुत्र हमारे पाप करने में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है, हमारे पास वह है जिसे यूहन्ना 13:17 में पैराक्लीट कहता है। इसलिए पुराने नियम के परमेश्वर की बहुत मजबूत उपस्थिति है, जिसने आज्ञाएं दी और लोगों को एक रिश्ता दिया, क्योंकि वे उसकी आज्ञाओं पर चलते थे, और जैसा कि उन्होंने एक दूसरे के लिए प्रेम किया। क्योंकि हम जानते हैं कि महान प्रेम की आज्ञाएं दोनों पुराने नियम में हैं। अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। तीसरी टिप्पणी चिंताजनक है। ध्यान दें कि वह कहता है, आपके कुछ बच्चे सत्य पर चल रहे हैं। यह श्लोक 4 में है। लेकिन बहुत से धोखेबाज बाहर निकल आए हैं। यह बहुत डरावना है। और ये धोखेबाज यीशु मसीह के दोषपूर्ण प्रतिनिधित्व की विशेषता रखते हैं। दुनिया में बहुत से धोखेबाज निकल आए हैं जो यीशु मसीह के देह में आने को स्वीकार नहीं करते, और मुझे लगता है कि उनका मतलब यह है। और मैं विशेष रूप से यह बताना चाहता हूं कि मसीह शब्द, अगर यह एक उचित नाम है, तो यह सिर्फ एक नाम नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है जो उनके मिशन और उनके मिशन को पूरा करने वाले के रूप में उनकी स्थिति को दर्शाता है। वह मसीहा है, वह अभिषिक्त जन है, वह परमेश्वर की ओर से भेजा गया व्यक्ति है, ताकि वह उस संसार पर परमेश्वर के शासन का उद्घाटन करे जिसे परमेश्वर छुड़ा रहा है। और बेशक परमेश्वर हमेशा से इसका शासक रहा है, लेकिन उसने किसी तरह आने का वादा किया है। अब हम जानते हैं कि वह अपने पुत्र में आया और उसने इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए परमेश्वर का प्रतिनिधित्व किया, और वह पापों के प्रायश्चित के लिए मर गया, और वह मृतकों में से जी उठा और मृत्यु पर विजय प्राप्त की और पिता के पास वापस आ गया, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए वापस आएगा। और फिर प्रभु के वापस आने पर यह दुनिया सही हो जाएगी, हालांकि परलोक विद्या समय सारिणी जो भी हो उस पर काम करती है। हम देखेंगे कि यह कब होता है। लेकिन ये धोखेबाज यीशु मसीह के देह में आने को स्वीकार नहीं करते, और इसका मतलब बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन यह उसके मिशन को उसकी पूर्णता में नकार देता है। इसका जो भी पहलू हो, क्या वे अवतार को नकार रहे हैं? क्या वे इस बात को नकार रहे हैं कि उसने चमत्कार किए? क्या वे इस बात को नकार रहे हैं कि वह पिता के पास गया? क्या वे इस बात को नकार रहे हैं कि क्रूस पर उसके खून ने पापों का प्रायश्चित किया? मेरा मतलब है, यीशु ने जब देह में आकर जो किया, उसके संदर्भ में उसे नकारने के बहुत से तरीके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यह जानबूझकर अस्पष्ट है, क्योंकि यह हमें व्यापक रूप से सोचने पर मजबूर करता है, और यह हमें सचेत करता है कि यीशु को अस्वीकार करने के बहुत से तरीके हैं। और हो सकता है कि आपको उसका नाम इस्तेमाल करना अच्छा लगे, और हो सकता है कि आपको ऐसे लोगों के आसपास होने का एहसास अच्छा लगे जो यीशु के बारे में बात करना पसंद करते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप यीशु के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु अपने मसीहाई मिशन की पूर्णता और ईश्वर के साथ अपनी एकता की अखंडता और जो कुछ उन्होंने कहा और जो उन्होंने सिखाया उसकी सच्चाई में, इसका मतलब यह नहीं है कि जब आप उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं तो यीशु आपके एजेंडे पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। और लोग हर जगह यीशु के नाम का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें से बहुत कुछ अच्छा है और बहुत कुछ संदिग्ध है। और हम यीशु के नाम के संदिग्ध उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। जो कोई भी ऐसा करता है वह कहता है, श्लोक 7 के अंत में, यहां अनुवाद धोखेबाज है। यह एक ऐसा शब्द है जो हमारे ग्रह शब्द से मिलता जुलता है, और इसका संबंध भटकने, अस्थिर होने से है। आप एक मिनट ऊपर देखेंगे और वहां शुक्र ग्रह है। थोड़ी देर बाद आप ऊपर देखते हैं तो आपको शुक्र दिखाई देता है। यह पूरे आसमान में दिखाई देता है, और किसी भी रात में तारे स्थिर होते हैं। आप सारी रात तारों को देखते रहते हैं, वे आकाश में नहीं घूम रहे हैं, उपग्रह आकाश में घूम रहे हैं, विमान आकाश में घूमते हैं, ग्रह घूमते हैं, लेकिन तारे नहीं। और ऐसे लोग भी हैं जो मसीह के संदर्भ में भटक रहे हैं। वे यहां हैं, वे वहां हैं, वे हर जगह हैं। और इसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो सकता है जो दूसरों को भटकाता है। वे शिष्य बनाते हैं, लेकिन वे अपने लिए या अपने आंदोलन के लिए शिष्य बना रहे हैं। वे मसीह के शिष्य नहीं बना रहे हैं। मसीह में स्थिरता है, मसीह के गलत चित्रण में अस्थिरता है, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि कोई धोखेबाज इस व्यक्ति के साथ मिलकर काम कर रहा है जिसे यूहन्ना मसीह विरोधी कहता है, जिसका अर्थ मसीह का विकल्प हो सकता है या इसका अर्थ मसीह का विरोधी हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसका मतलब दोनों है। तो मनुष्य हैं, और मान लीजिए कि वे अच्छे इरादे वाले हैं, लेकिन अगर वे मसीह को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, चाहे वे इसे जानते हों या नहीं, वे किसी ऐसे व्यक्ति के इशारे पर काम कर रहे हैं जिसके अस्तित्व पर वे शायद विश्वास भी न करते हों, और हम अक्सर उसे शैतान या शैतान कहते हैं। और वह मसीह विरोधी या मसीह विरोधी की आत्मा है। और जॉन को यह चिंता है कि इस चर्च में यह दुर्भावनापूर्ण प्रभाव है जिसके बारे में कहने के लिए उसके पास अच्छी बातें हैं और अच्छी बातें हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब वह कहता है आपके कुछ बच्चे, यह उतनी अच्छी खबर नहीं है जितनी हो सकती थी। और फिर जब वह कहता है कि बहुत से धोखेबाज हैं, तो यह थोड़ा और डरावना है। और इसलिए उसके आनंद और चिंता के पैराग्राफ का अंत है कि खुद पर नजर रखें ताकि आप वह न खो दें जिसके लिए हमने काम किया है। इसलिए वह खुद को एक प्रेरित और देहाती नेता के रूप में देखता है। ईसाई चाहे जो भी करें, वे काम करते हैं। यही मनुष्य का भाग्य है। भगवान ने बगीचे की देखभाल करने के लिए आदम और हव्वा को बगीचे में रखा था। यह उनके पाप करने से पहले की बात है। 10 आज्ञाएं कहती हैं, 6 दिन तुम्हें काम करना होगा। यह भगवान की धरती है। हम ईश्वर की धरती की देखभाल के प्रतिनिधि हैं। और इसलिए मेहनत करना एक शानदार बात है। अब पाप के कारण लोग उस चीज से नाराज हो जाते हैं जो ईश्वर ने उन्हें करने के लिए बनाया है। इसलिए कई बार लोग काम से नफरत करते हैं। लेकिन हिब्रू, यहूदी, ईसाई धर्म में काम को महत्व दिया जाता है। हम अपने दैनिक श्रम से परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक बड़ा उपाय क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरों से प्रेम करना हमारी महिमा है। और हम दूसरों की देखभाल करके उनसे प्रेम करते हैं। और दूसरों की देखभाल करना काम है। अगर आप एक माँ हैं, तो आप अपने बच्चों की देखभाल कैसे करती हैं? मेरा मतलब है, आप ऐसी चीजें करती हैं जिससे वे खा सकें, साफ सुथरे रह सकें, खेल सकें और सुरक्षित रह सकें। और जो माता पिता अच्छे माता पिता हैं, वे हर समय थके रहते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों की सेवा करते रहते हैं। और अच्छे माता पिता के बच्चे, खासकर अगर परिवार में कई बच्चे हैं, तो वे घर के काम करना सीख जाते हैं। मेरा मतलब है, बच्चों को खेलना चाहिए, लेकिन बच्चों को अपने भाई बहनों की सेवा करना भी सीखना चाहिए और अपने माता पिता की मदद करना सीखना चाहिए और जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है उसका पालन करना सीखना चाहिए। आप जानते हैं, उनके चरित्र को आकार दें ताकि उनके जीवन में दूसरों की जरूरतों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता हो। और मैं दूसरों के लिए कैसे लाभकारी हो सकता हूँ? खैर, जॉन, यह पुराने नियम से जुड़ा हुआ है। वह परमेश्वर के लिए काम करके परमेश्वर की महिमा करने की पुराने नियम की विरासत से जुड़ा हुआ है। पॉल ने कहा कि हम परमेश्वर के साथ सहश्रमिक हैं। और जॉन कहते हैं कि हमने कुछ काम किया है। अगर जॉन एशिया के चर्चों के पादरी हैं, तो वे शायद 10, 20 या 25 साल से वहां हैं। और वहां श्रम की विरासत है। और आप जानते हैं, इस बुतपरस्त क्षेत्र से चर्च उभरे जहां शैतान का आराधनालय था। क्या वह सर्दीस में था? मुझे ठीक से याद नहीं कि वह कौन सा चर्च था। लेकिन आप जानते हैं, वहां बहुत सारे नापाक प्रभाव थे। एक चर्च में एक इजेबेल थी। उन्हें कई चीजों पर काबू पाना था। और फिर बुतपरस्त संस्कृति ईसाई धर्म के अनुकूल नहीं थी। और रोमन साम्राज्यवादी पंथ ईसाई धर्म के अनुकूल नहीं था। और इफिसियों के आर्टेमिस का पंथ। याद कीजिए प्रेरितों के काम 19 में जब चर्च की स्थापना की गई थी, तो दंगे हुए थे क्योंकि शुरुआती ईसाई लोगों को इतनी सारी मूर्तियां खरीदने से मना कर रहे थे। और इसलिए चांदी के कारीगरों के संघ ने विद्रोह कर दिया, और उन्होंने ईसाइयों के प्रति शत्रुता के कारण दंगे भड़काए। और आप जानते हैं, उनकी आजीविका की इच्छा। इसलिए अगर वहां ईसाई उपस्थिति है और थी, तो यह इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बलिदान, बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रयास थे। गति नहीं खोना चाहते। हम उस इनाम को नहीं खोना चाहते जिसके लिए हमने काम किया है। अपने आप पर नजर रखें ताकि आप पूरा इनाम जीत सकें। तुम्हें पता है, यह महसूस करने में कुछ भी गलत नहीं है कि मैं काम कर रहा हूं। मैं थक गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ जो हुआ, वह मेरे साथ क्यों हुआ। हाल ही में मैं एक सेमिनरी ग्रेजुएशन में था। मैं पूरे हफ्ते पेपर ग्रेड करने और लेक्चर तैयार करने से बहुत थक गया था। और आप जानते हैं, मैं एक बुलाया हुआ और नियुक्त पादरी और प्रोफेसर हूं। इसलिए मैं भगवान के लिए काम कर रहा हूं। और मुझे ग्रेजुएशन के दौरान एक संदेश मिला और उसमें लिखा था, और मुझे पता था कि तूफान आने वाला है क्योंकि हमें बवंडर की चेतावनी मिली थी। हम उस इमारत के बेसमेंट में गए थे जहां हमारा ग्रेजुएशन था। लेकिन हम ऊपर गए और सैकड़ों लोगों के साथ एक ग्रेजुएशन समारोह में थे। और मुझे यह संदेश मिला, हमारे घर पर एक पेड़ गिर गया है। और यह संदेश मेरी पत्नी का था। तो मैं घर चला गया। मैं ग्रेजुएशन समारोह छोड़कर चला गया। मुझे उम्मीद है कि मेरे राष्ट्रपति मुझे माफ कर देंगे। और मुझे पता चला कि यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बुरा था। और उस दिन बहुत से लोगों को पता चला कि यह जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बुरा था। जब एक बड़े शहर में एक बड़ा तूफान आया, तो 5 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोगों ने अपने घर खो दिए। हजारों लोगों ने घर, नौकरियां और अपनी पूरी जिंदगी खो दी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन हमारे पास एक परखा हुआ विश्वास है कि लंबे समय में या तो हम समझ जाएंगे या हमें एहसास होगा कि हमें समझने की जरूरत नहीं है। दुनिया में परमेश्वर के अपने तरीके हैं और हम मानते हैं कि हमारे परमेश्वर के तरीके परिपूर्ण हैं। और इसलिए हम उस पर भरोसा करना जारी रखेंगे, भले ही अल्पावधि में दुनिया में परमेश्वर के शासन का परिणाम हमें बहुत नकारात्मक लगे। तुमने उस पेड़ को मेरे घर पर क्यों गिरने दिया? अच्छा, क्योंकि वह परमेश्वर है। अब क्या तुम मानते हो कि परमेश्वर अच्छा है? यह अच्छा नहीं है कि एक पेड़ तुम्हारे घर पर गिर गया। लेकिन यह ईश्वर के खिलाफ विद्रोह की दुनिया है। और इसलिए ऐसी चीजें होती हैं जो हम सभी को याद दिलाती हैं कि दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आपके और ईश्वर के साथ सब कुछ ठीक है। और मुझे कहना चाहिए, मुझे ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करना पसंद नहीं था। मैं सिर्फ एक इंसान के तौर पर जागरूक था। मेरा घर क्यों? किसी और का घर क्यों नहीं? लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जिनसे धरती पर हर किसी को जूझना पड़ता है। और हम में से कई लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, जिसने हमें अपने साथ एक ऐसा संबंध बनाने के लिए अपने बेटे को भेजा जो हमें जीने या मरने से ऊपर उठाता है, चाहे हमारे घर पर पेड़ गिर जाए। क्योंकि खास तौर पर अनंतकाल के प्रकाश में मेरे यार्ड में वह पेड़ कोई बड़ा अंतर नहीं डालने वाला है, और मुझे कहना चाहिए वह पेड़ और भी बड़ा हो सकता था, वह और भी बुरी तरह गिर सकता था, और सभी तरह के कारणों से मेरे घर के आसपास हुए नुकसान का जायजा लेने के एक या दो घंटे के भीतर ही मुझे एहसास हो गया कि हम कैसे बच गए। संभवतः मौत से घायल, क्योंकि हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, सभी पेड़ गिर गए थे, और हमारे घर पर दूसरे शहर से मेहमान आए थे, और किसी और दिन जब वे आए हम जंगल में होते, और वह हवा कहीं से भी आई, और शायद 10 सेकंड में इसने पूरी पहाड़ी को मिटा दिया और वहां कोई पेड़ खड़ा नहीं है। और ये पेड़ ऐसे हैं जिनका व्यास 1 मीटर तक है, और इसने उन्हें तोड़ दिया, इसने उन्हें बहुत ऊपर से तोड़ दिया, इसने उन्हें जड़ से उखाड़ दिया, इसने उन्हें जमीन पर तोड़ दिया। वहां कोई भी जगह जहां से रास्ता सीधे जाता है हम वहां होते, लेकिन हम नहीं थे, क्योंकि ईश्वरीय कृपा से उसी ईश्वर ने जिसने हवा भेजी हमें कहीं और भेजा। पूरा इनाम पाना गलत नहीं है, चाहे इसका मतलब ईश्वर में कुछ भी हो, यह महसूस करना गलत नहीं है कि काम करना बाकी है। यह शानदार काम है, लेकिन यह काम है, लेकिन हमारे पास अभी जो काम है उसकी पूर्ति के अलावा, जिसे आप जानते हैं, हम अपने दैनिक श्रम में पूर्णता सीखते हैं। प्रभु के लिए जीना एक शानदार बात है, जब तक वह हमें ऊर्जा देता है और जब तक वह हमें सोचने और शायद आगे बढ़ने और उसके नाम पर काम करने की क्षमता देता है। लेकिन वह प्रतिफल, जैसा कि कहा जाता है, उस प्रतिफल की तुलना में कुछ भी नहीं है जो हमें तब मिलेगा जब हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। तो आइए चेतावनी की ओर बढ़ते हैं, 9 से 11 तक। जो कोई आगे बढ़ता है, और अब यह इस संबंध में है, अपने आप को और धोखा देने वालों को देखो। जो कोई भी आगे बढ़ता है और मसीह की शिक्षा में नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई भी शिक्षा में रहता है उसके लिए फिर से वही शब्द है, स्थिर रहता है, जड़ जमाए रहता है, जमीन पर टिका रहता है। जो कोई भी शिक्षा में रहता है उसके पास पिता और पुत्र दोनों हैं। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा न दे, तो उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई उसको नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में भागी होता है। इस प्रकार इन सब बातों की तरह इनके विषय में भी शास्त्रों में विवाद है, लेकिन मैं इसका मतलब यह समझूंगा कि जो कोई भी जॉन द्वारा चेतावनी दिए जाने के विरुद्ध दोषी है। जॉन और प्रेरितिक संदेश को अलग अलग पहचाना जा सकता है। इसमें स्वीकारोक्ति का एक समूह है, एक संदेश है, आज्ञाएं हैं, एक सामाजिक उपस्थिति है, एक भौतिक उपस्थिति है, ईश्वर की एक धार्मिक उपस्थिति है। यदि आप उस क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं, और वह यह भी परिभाषित करता है कि शब्द से उसका क्या मतलब है, और वह मसीह की शिक्षा में नहीं रहता। आप जहां भी जाएं, वैचारिक रूप से, तार्किक रूप से, शारीरिक रूप से, जहां भी जाएं, और यह आपको मसीह की शिक्षा से बाहर ले जाता है। और यह मसीह के बारे में शिक्षा हो सकती है, यह मसीह की शिक्षा हो सकती है, यह दोनों हो सकती है। जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो आपके पास ईश्वर नहीं होता। तो यह इस चेतावनी का पहला भाग है। दूसरा, शिक्षा सत्य है। वह सत्य का बहुत जिक्र करता है, और शिक्षा इसका दूसरा नाम है। मसीह द्वारा दी गई शिक्षा मसीह के बारे में शिक्षा और यह शिक्षा और सिद्धांतों का यह समूह ईश्वर के होने या न होने का सूचक है। ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। अब जैसा कि मैं अगले व्याख्यान में एक बार फिर कहूंगा, मैं यह बताऊंगा कि यह शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे लोगों की शिक्षा के द्वारा परिभाषा के अनुसार वे खुद को मसीह के शासन के दायरे से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि वे उस मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं जिसे प्रेरितों ने सिखाया था और जिसकी पवित्र शास्त्र हमें सलाह देता है। इसलिए ये आयतें उस दायरे से बाहर जाने के बारे में चेतावनी देती हैं। वे हमें सत्य से भटकने के बारे में चेतावनी देते हैं। और फिर अभिवादन या मेजबानी के बारे में ये शब्द हैं। और मुझे लगता है कि यह यात्रा करने वाले मिशनरियों, प्रचारकों और गेयस जैसे चर्च कार्यकर्ताओं को संदर्भित करता है जिनकी मेजबानी के लिए प्रशंसा की जाती है। 3 यूहन्ना 5:6-7-8 में आप जानते हैं कुछ भाई हैं जो यूहन्ना के पास आते हैं। भाई गयुस के पास जाते हैं और यीशु कहते हैं कि तुम्हें इन लोगों का अभिवादन करना चाहिए। वे बाहर जा रहे हैं, वे नाम के लिए बाहर जा रहे हैं। ईसाई धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लोगों को अपनी मेजबानी करने की अनुमति देकर वे समझौता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें मसीह के प्रति अपनी गवाही से समझौता करना पड़ेगा। जहां सुसमाचार फलता फूलता है वहां हमेशा प्रतिद्वंद्वी होंगे और हमेशा नकली होंगे, और हमें यह तय करना होगा कि हम किसका समर्थन करेंगे, हम किसे अपने विश्वास में साथी विश्वासियों के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमें हर किसी को शिष्य बनाना है, हमें उन पर ईसाई प्रभाव डालना है। और आप उन लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जिन्हें आप जानते हैं कि वे ईसाई हैं, जैसा आप उन लोगों के साथ करते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि वे ईसाई नहीं हैं, या जिनके बारे में आपको यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि वे ईसाई हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह सीधे सवाल से संबंधित है। अगर आपका कोई भाई या बहन है या आपके माता पिता हैं तो वे ईसाई नहीं हैं और वे आपसे मिलने आना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह इस बात पर बात कर रहा है कि आपको उनसे नमस्ते कहना चाहिए या उन्हें रात भर या सप्ताहांत के लिए अपने घर पर रहने देना चाहिए क्योंकि वे ईसाई नहीं हैं। इन आयतों ने अक्सर बहुत पीड़ा पैदा की है क्योंकि लोग कहते हैं, ठीक है, यह दोस्त मुझसे मिलना चाहता है लेकिन वह ईसाई नहीं है, और यह कहता है कि मैं उसे अपने घर पर स्वागत नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि दूसरे और तीसरे यूहन्ना के संदर्भ में यह एक ईसाई भाई को बधाई देने या इन लोगों के काम का समर्थन करने के बारे में बात कर रहा है। अपने घर को धोखेबाजों के लिए एक मिशनरी चौकी बनाना, या जो लोग मसीह की शिक्षाओं को नहीं सिखाते हैं उनके मिशन में सक्रिय रूप से उनका समर्थन करना। तो यहां इस बारे में थोड़ी उलझन है कि इसे कैसे लागू किया जाए, और अगर आप इससे जूझ रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पादरी नेताओं से बात करें और देखें कि यह आपके इलाके में कैसे लागू हो सकता है, क्योंकि दुनिया के बहुत से हिस्सों में हमारे पास बहुत सारे शरणार्थी हैं। हमारे पास आने जाने वाले लोग हैं जिन्हें हम भाई बहन मानते हैं, और हम शायद किसका आतिथ्य करते हैं, लेकिन हम उनके साथ ईसाइयों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हम उनके साथ ऐसे लोगों के रूप में व्यवहार कर रहे हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमें सभी लोगों, विशेष रूप से विश्वास के घराने के लोगों के लिए अच्छा करने के लिए बुलाया है। और फिर वह कहता है, अलविदा, और मैं इस व्याख्यान के लिए आपसे विदाई लेने के करीब पहुंच रहा हूं। हालांकि मुझे आपको लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं कागज और स्याही का उपयोग नहीं करना चाहता। इसके बजाय मैं आपके पास आकर आमने सामने बात करने की उम्मीद करता हूं ताकि हमारा आनंद पूरा हो सके। आपकी चुनी हुई बहन के बच्चे, और इसलिए मैं इसे स्थानीय चर्च के बच्चे मानता हूँ जिसका प्रतिनिधित्व जॉन करता है, या विश्वासी, जहाँ भी जॉन है, जो एक चर्च विश्वासियों की एक सभा का गठन कर रहे हैं, उस चर्च के बच्चे, चर्च के सदस्य आपको नमस्कार करते हैं। यह काफी हद तक तीन जॉन के अंत को दोहराता है। यह लगभग उसी शब्द के समान है। निश्चित रूप से विचार भी वही है। और आनंद को पूरा करना इस व्याख्यान को पूरा करने का एक शानदार तरीका है। पूर्ण आनंद की भावना चौथे सुसमाचार में यीशु से संबंधित भावनाओं को प्रतिध्वनित करती है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि यूहन्ना के पत्र में, जिसे हम एक यूहन्ना कहते हैं, वह एक यूहन्ना लिखता है ताकि हमारा आनंद या तुम्हारा आनंद पूर्ण हो सके। लेकिन प्रिय शिष्य, यूहन्ना जेबेदी का पुत्र, दो और तीन यूहन्ना का लेखक उस विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आगे बढ़ाता है जिसे उसने और यीशु ने साझा किया था। दरअसल हम इसे सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में देखते हैं। यूहन्ना अध्याय तीन में यूहन्ना कहता है, जिसके पास दुल्हन है वही दूल्हा है। दूल्हे का दोस्त जो खड़ा होकर उसे सुनता है, दूल्हे की आवाज सुनकर बहुत खुश होता है। इसलिए मेरा यह आनंद अब पूरा हो गया है। और फिर वह मसीह का हवाला देते हुए कहता है, उसे बढ़ना चाहिए और मुझे कम होना चाहिए। लेकिन यूहन्ना का आनंद मसीहा में परमेश्वर के वादे को पूरा होते देखकर पूरा हुआ, जिसका वह अग्रदूत था। और फिर बाद में ऊपरी कमरे में उस रात के प्रवचन में जब उसे धोखा दिया गया था, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। याद रखें, पौलुस ने लिखा है कि पवित्र आत्मा के कुछ चिन्ह हैं, जीवन में उसकी उपस्थिति का प्रमाण है, और पहला सबूत है प्रेम, और दूसरा सबूत और पवित्र आत्मा का दूसरा उत्पाद फल कहलाता है, जैसा कि गलातियों 5 में बताया गया है। आत्मा का दूसरा फल है आनंद, प्रेम, आनंद, शालोम या शांति। यीशु कहते हैं, सच सच मैं तुमसे कहता हूँ, और यह उस अध्याय में है जहाँ वह उत्पीड़न के बारे में बात करता है, तुम रोओगे और विलाप करोगे, लेकिन दुनिया आनंद मनाएगी। आप जानते हैं, जब यीशु मरा तो बहुत से लोग खुश हुए, और इसने उसके शिष्यों को पूरी तरह से तोड़ दिया। तुम दुखी होगे, लेकिन तुम्हारा दुख खुशी में बदल जाएगा। वह एक महिला का उदाहरण देता है जो बच्चे को जन्म दे रही है। जब एक महिला बच्चे को जन्म दे रही होती है तो उसे दुख होता है क्योंकि उसका समय आ गया है। लेकिन जब वह बच्चे को जन्म दे देती है तो उसे अब वह खुशी की पीड़ा याद नहीं रहती कि दुनिया में एक इंसान का जन्म हुआ है। माताएं वास्तव में बच्चों की चाहत रखती हैं, और दादी नानी भी, और परदादी परदादी और दादा परदादी भी, अगर वे अभी भी जीवित हैं। नए बच्चे बहुत खुशी लेकर आते हैं, अक्सर बहुत कष्ट के बाद, क्योंकि न केवल प्रसव पीड़ा कठिन होती है बल्कि कभी कभी गर्भावस्था बहुत तनाव और बहुत पीड़ा पैदा करती है। इसलिए अब आपको भी दुःख है। यीशु ऊपरी कमरे में है। वह उन्हें सारी बुरी बातें बता रहा है जो होने वाली हैं और जिन्हें वे नहीं समझते। अब तुम्हें दुःख है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से देखूंगा और तुम्हारे दिल आनंदित होंगे, और कोई भी तुम्हारा आनंद तुमसे नहीं छीन सकेगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है। मांगो और तुम्हें मिलेगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आनंद की परिपूर्णता की वही भाषा फिर से है। अंत में यूहन्ना 17 में यीशु की तथाकथित महायाजकीय प्रार्थना में वह पिता से कहता है, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और ये बातें मैं दुनिया में कहता हूँ, ताकि वे, यानी मेरे अनुयायी, अपने भीतर मेरा आनंद पूरा पा सकें। तो मैं आपको यह नोट देकर छोड़ता हूँ कि जॉन के पत्रों का अध्ययन करना एक काम है। व्याख्यान सुनना भी एक तरह का श्रम है। व्याख्यान देना भी एक तरह का श्रम है। लेकिन हम प्रभु में और प्रभु के लिए तथा उसके साथ संगति में और एक दूसरे के साथ संगति में जो भी श्रम करते हैं, उससे एक खुशी जुड़ी होती है। यह क्षण की खुशी है। यह परमेश्वर के वादे के पूरे होने की खुशी है, क्योंकि हम उसके वचन के माध्यम से जो कुछ कहना चाहते हैं, उसे जीते हैं। और इसलिए मैं इस व्याख्यान के समापन पर आपके लिए शांति और आनंद की कामना करता हूँ। धन्यवाद।